नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपका। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा
और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर।
और आज हम हाजिर हैं लेकर 1 से 15 अगस्त का अंक। दोस्तों, एक देश एक विधान एक प्रधान और एक निशान के दशकों पुराने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने और एकता के सूत्र में बांधने के 6 वर्ष पूरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रगति और समृद्धि का नया युग आया है। भेदभाव भरे 6 दशक के सिलसिले के खात्मे की 6वीं वर्षगांठ और अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति के बाद बदलाव की इस बयार के साथ विकास की मुख्य धारा में शामिल जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे इस बार के अंक की आवरण कथा बने हैं।
वही व्यक्तित्व की कड़ी में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष की विकास यात्रा, देश के पहले सहकारिता विश्वविद्यालय के शिलान्यास एवं 79वें स्वतंत्रता दिवस पर विशेष सामग्री, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के शामिल होने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा सहित उनके पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही पत्रिका के इनसाइड में आजादी का अगस्त अध्याय और बैक कवर पर 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को समाहित किया गया है।
दोस्तों, ऐसा देश है भारत जहां विकास की गूंज खेत गांव और शहर में एक साथ सुनाई देती है। सहकारिता इस विकास का एक मौन लेकिन शक्तिशाली आधार है। किसान को उचित मूल्य की बात हो या फिर महिला और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाना हो, भारत में सहकारी समितियां आर्थिक मानवीय और पर्यावरण समृद्धि के साथ साथ गरीब कल्याण के समावेशी विकास का ताना बाना बुन रही हैं। सहकारिता को और मजबूती देने की कड़ी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। सहकारी समितियां जन केंद्रित होती हैं दोस्तों, जिनका स्वामित्व नियंत्रण और संचालन उनके सदस्य ही करते हैं।
वे अपनी सामान्य आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकता और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। स्वतंत्रता पूर्व एक छोटी सी यात्रा के रूप में शुरू हुई सहकारिता आज पूरे भारत में 8.42 लाख सहकारी समिति के नेटवर्क के साथ जन आंदोलन का रूप ले चुकी है, जिसमें देश का हर चौथा नागरिक जुड़ा है। वहीं वैश्विक स्तर पर इनकी संख्या 30 लाख है। देश के करोड़ों गरीब और ग्रामीणों के जीवन में आशा का संचार कर उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की थी। सहकारिता के वैश्विक महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। सहकारिता के महत्व पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कहते हैं,
नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के लगभग 75 साल के बाद सहकारिता मंत्रालय बनाया और सहकारिता मंत्रालय जब बना तब सहकारिता क्षेत्र एक प्रकार से जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिख रहा था। आज देश का एक छोटे से छोटे सहकारी इकाई का मेंबर गर्व के साथ आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो गया है, ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है। ये 4 साल के अंदर सहकारिता क्षेत्र समानता के आधार पर कोऑपरेटिव सेक्टर कॉरपोरेट की समानता के आधार पर हर पैमाने पर खड़ा है। और जब मैं कहता हूं कि समानता के आधार पर खड़ा है तब प्रायोरिटी की दृष्टि से, टैक्सेशन की दृष्टि से और विकास के लिए उपलब्ध फंड की दृष्टि से, सभी दृष्टि से कोऑपरेटिव सेक्टर कॉरपोरेट के साथ समानता के आधार पर। और एक जमाने में कुछ साल पहले 2020 में ही अगर कोई देख लेता तो बहुत सारे अर्थतंत्र के जानकार लोगों ने इसको एक डाइंग सेक्टर डिक्लेयर कर दिया था। आज वही लोग मुझे मिलते हैं और मेरे अलावे जिन जिन को मिलते हैं वो कहते हैं इसका भी एक फ्यूचर है।
वैश्विक महत्व वाली सहकारिता को देश में और मजबूती देने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में देश के पहले त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया। 500 करोड़ रुपए की लागत से ये 125 एकड़ में बनाया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसके बाद से भारत में सहकारिता क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए 60 नई पहल की गई हैं। सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने में जो कमियां रह गई थीं, ये विश्वविद्यालय उनको पूरा करने की एक महत्वपूर्ण पहल है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज देश भर में सहकारिता आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास इसी दिशा में एक युगांतरकारी कदम है। सहकारिता के कर्मचारियों और सहकारी समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण की अभी कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है, लिहाजा कोऑपरेटिव में भर्ती के बाद कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी बनने के बाद उसी को नौकरी मिलेगी जिन्होंने प्रशिक्षण लिया होगा। इसके बाद सहकारिता में और पारदर्शिता आएगी। देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय के शिलान्यास से जुड़ी सभी जानकारी पत्रिका में शामिल है।
दोस्तों, भारत जैसे 140 करोड़ से ज्यादा आबादी और भौगोलिक कठिनाइयों वाले विशाल देश में स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी आसान पहुँच कैसे हो? तकनीक के इस युग में भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल व्यवस्था के साथ जोड़कर न सिर्फ इसका हल निकाला है बल्कि करोड़ों नागरिकों तक इसे पहुंचाकर अपने सामर्थ्य और दक्षता का प्रमाण भी दिया है। 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के साथ ही नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तौर पर शुरू हुआ स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटलीकरण का ये दौर अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक बन गया है।
दिल्ली में द्वारका में रहने वाली अफसाना आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ABHA यानी आभा की खूबियां गिनाते हुए कहती हैं, अब न तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट साथ रखनी होती है और न जांच रिपोर्ट खोने का डर है, एक क्लिक पर डॉक्टर को सब दिख जाता है। आभा का ऐसा ही कुछ अनुभव प्रिया राघव का भी है। प्रिया कहती है, इससे काफी समय बचता है, इसलिए सभी को ये कार्ड बनवाना चाहिए।
जी हाँ दोस्तों, और ये कहानी सिर्फ अफसाना और प्रिया की नहीं है बल्कि करोड़ों ऐसे लोगों की ये कहानी है जिनको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM का लाभ मिल रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के महत्व के बारे में कहते हैं।
साथियों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इसके तहत देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ ID मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। डिजिटल हेल्थ ID के माध्यम से मरीज खुद भी और डॉक्टर भी पुराने रिकॉर्ड को जरूरत पड़ने पर चेक कर सकता है। यही नहीं, इसमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स जैसे साथियों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। देश के जो अस्पताल है, क्लिनिक है, लैब्स हैं, दवा की दुकानें हैं, ये सभी भी रजिस्टर होगी। यानी ये डिजिटल मिशन हेल्थ से जुड़े हर स्टेक होल्डर को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएगा।
कोविड महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया थमी हुई थी तब डिजिटल तकनीक के महत्व को सबने बहुत करीब से जाना। कोविन ऐप जैसी सेवाओं ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन के एक नए युग की शुरुआत की। सबको मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत भारत ने कोविन ऐप के जरिए ही दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान संभव कर दिखाया। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत ने स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण के नए युग का सूत्रपात किया। अब डिजिटल स्वास्थ्य सेवा की ये क्रांति न केवल बड़े शहरों की आधुनिक सुविधाओं को और प्रभावी बना रही है बल्कि दूर दराज के गांवों में भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बना रही है।
इस मिशन के माध्यम से विशिष्ट स्वास्थ्य ID के जरिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और रोगियों को एकीकृत करके एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। ABDM के 5 वर्ष पर एक रिपोर्ट इस पत्रिका में शामिल है। दोस्तों, आज जब विश्व व्यवस्थाओं पर चारों तरफ से दबाव है और दुनिया अनेक चुनौतियों से जूझ रही है तो ऐसे समय में भारत की भूमिका और उसकी रीति नीति की झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्लोबल साउथ के 5 अहम देशों के दौरे में दिखाई दी। घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैको, अर्जेंटीना और नामीबिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों को उचित प्रतिनिधित्व पर जोर दिया। और वहीं ब्राजील में ब्रिक्स के 17वें शिखर सम्मेलन के मंच पर तमाम विरोधाभासों को दरकिनार करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जैसे मुद्दे समेत भारत की प्राथमिकताएं रियो द जनेरियो घोषणा पत्र में शामिल हुई।
वैश्विक शांति और सुरक्षा केवल एक आदर्श नहीं है, ये सभी के साझा हित और भविष्य की बुनियाद है। एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में ही मानवता का विकास संभव है। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक विश्व विवाद और तनावों से घिरा हुआ है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम मुद्दों को उठाया। ब्रिक्स सम्मेलन के 4 सत्र के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद से लेकर वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म्स और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ दोहरे व्यवहार का जिक्र किया। इस मौके पर किस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी क्या बोले, ये सब पत्रिका के माध्यम से आप जान सकते हैं।
दोस्तों, आर्थिक और सामाजिक विकास के आधार पर दुनिया को साउथ और नॉर्थ में बांट देना उपनिवेशवाद की देन है। ये आश्चर्य है कि दुनिया की करीब 40% GDP वाले करीब 85% आबादी जहां रहती हो और वैश्विक कारोबार में 40% से जिनका अधिक का हिस्सा हो, ऐसे ग्लोबल साउथ के 100 से ज्यादा देशों को लंबे समय से असमानता झेलनी पड़ी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ नई भू राजनीतिक व्यवस्था में भारत ने अपने उदय और बढ़ते प्रभाव के बीच इन देशों को एक नया मंच देकर उनकी आवाज बनने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 8 दिन के दौरे पर एक बार फिर ग्लोबल साउथ के साथ भारत के विजन और रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित किया। पीएम मोदी की यात्रा ऐसे समय हुई जब त्रिनिदाद 1845 में पहली बार भारतीयों के यहाँ आगमन की 180वीं वर्षगांठ मना रहा है।
त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के निमंत्रण पर हुई इस यात्रा के दौरान देश के प्रधानमंत्रियों ने व्यापक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला त्रिनिदाद एंड टोबैगो कैरेबियन क्षेत्र का पहला देश बना। पीएम मोदी ने नामीबिया के संसद को भी संबोधित किया और अपने दौरे के 3rd पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचे। ये 57 साल में भारत के किसी प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय अर्जेंटीना यात्रा है। वहीं ब्राजील में पीएम मोदी का स्वागत शिव तांडव स्त्रोत के साथ किया गया। प्रधानमंत्री के 5 देशों के दौरों और ग्लोबल साउथ की ताकत बनती भारत की आवाज की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है।
दोस्तों, भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, तो इसके मूल में नीतिगत सुधारों के रूप में वो रिफॉर्म्स हैं जिनकी नींव 2014 के बाद रखी गई थी। इन सुधारों का असर रोजगार के क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है।
इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिसकी जानकारी आप पत्रिका पढ़कर ले सकते हैं।
श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, जिसका पता है newindiasamachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हां, डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा बेसब्री से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा
और मैं विनीता ठाकुर, आपसे लेते हैं इजाजत।
नमस्कार।